بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. انداز جہاں کے ساتھ میں علی باس رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے امریکہ کے صدارتی انتخابات اور باراک اوباما کی جیت. اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد. جی ناظرین، امریکہ کے صدارتی انتخابات کا انتخابی عمل بالآخر و سر انجام مکمل ہوا، اگرچہ اس دوران سینڈی جیسے ہولناک اور خطرناک قدرتی آفات بھی سامنے آئیں اور ابھی بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہیں. لیکن انتخابی گہما گہمی میں نیویارک ہو یا نیو جرسی، ہر جگہ متاثرہ افراد کو فراموش کر دیا گیا تھا. بالآخر انتخابات انجام پایا اور صدر باراک اوباما ایک بار پھر وائٹ ہاؤس میں براجمان ہوں گے اور 4 سال کے لیے امریکہ کے صدر منتخب کر لیے گئے. انہیں الیکٹورل کالج کے 303 جبکہ ان کے حریف ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار مٹ رامنی کو 206 الیکٹورل کالج کے ووٹ ملے. بہرحال باراک اوباما کامیاب ہوئے اور انہوں نے اپنی کامیابی پر عوام کا شکریہ ادا کیا، اپنے حریف کا بھی شکریہ ادا کیا. ان کے حریف مٹ رامنی نے انہیں مبارکباد بھی پیش کی وغیرہ وغیرہ. جو ایک سفارتی اور سیاسی عمل ہوتا ہے وہ سب کچھ انجام پایا. لیکن جب وہ جنوری میں دوبارہ دوسرے عہد صدارت کے طور پر اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے یا کام شروع کریں گے، تو اس کے بعد سے ان کے سامنے جو مشکلات آئیں گی، جو چیلنجز درپیش ہوں گے، خود داخلی سطح پر اور خارجی سطح پر، وہ کس طرح سے نمٹیں گے، اور جو ان کے سامنے معاشی مشکلات اور دیگر جو داخلی سطح پر چیلنجز ہیں ان کا وہ کس طرح سے سامنا کریں گے، اور سب سے بڑھ کر خارجہ پالیسی میں جو ان کے سامنے مشکلات ہیں، جو ان کے سامنے مسائل ہیں، جو چیلنجز ہیں، ان سے وہ کس طرح سے نمٹیں گے. انہوں نے اپنے پہلے صدارتی الیکشن کی انتخابی مہم کی طرح اس بار بھی بہت سے وعدے کیے تھے، لیکن جس طرح سے انہوں نے پہلے صدارتی مرحلے کے انتخابات میں تبدیلی کا نعرہ دیا تھا، وہ ابھی تک تبدیلی نہ تو لا سکے اور نہ ہی سلسلے میں ان کا کچھ بس چل سکا. اس بار بھی انہوں نے انتخابی مہم کے دوران بہت سے وعدے کیے تھے، حتیٰ ملک کی اقتصادی مشکلات کو برطرف کرنے کا انہوں نے سب سے بڑا نعرہ دیا تھا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ انتخابی عمل جیتنے کے بعد، یعنی صدارتی الیکشن جیتنے کے بعد، باراک اوباما نے آج جو پہلی تقریر کی اس میں انہوں نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا یا کسی طرح کی یقین دہانی امریکی عوام کو نہیں کرائی کہ وہ اب جب کہ دوبارہ منتخب ہو گئے ہیں تو وہ ان کی اقتصادی اور معاشی مشکلات کو دور اور برطرف کر سکیں گے. بہرحال ابھی سے ان کے بیانات میں تضاد دیکھنا شروع ہو گیا ہے. انتخابی مہم کے دوران تو انہوں نے اقتصادی مسائل کو سب سے زیادہ ترجیحات دی اور یہ کہا کہ ہم اقتصادی مشکلات حل کریں گے، لیکن آج جب انہوں نے اپنی پہلی تقریر کی تو اس میں اس طرح کی کوئی بھی بات دیکھنے کو نہیں ملی. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ امریکہ بہادر، جو دنیا کے تمام ملکوں کے جمہوریت کے طریقہ کار، انتخابی عمل اور کس طرح سے حکومتیں الیکٹ ہوتی ہیں یا منتخب ہوتی ہیں اس کے طریقہ کار پر اعتراض کرتا ہے، خود اگر امریکہ کا جو انتخابی سسٹم ہے، الیکشن سسٹم ہے یا ووٹنگ کا جو سسٹم ہے اس پر نظر ڈالی جائے تو ایک عجیب و غریب سی صورتحال سامنے آتی ہے. وہاں سب سے بڑی صورتحال اور سب سے بڑی اعتراض کی بات یہ ہے کہ عوام کو براہ راست اپنے صدر کو منتخب کرنے کا حق ہی حاصل نہیں ہوتا. ایسا ملک، ایسا امریکہ جہاں پر عوام کو اپنے صدر کو منتخب کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، وہ امریکہ دنیا کے دیگر ملکوں کے انتخابی سسٹم، الیکشن سسٹم اور ووٹنگ سسٹم پر بڑھ چڑھ کر اعتراض کرتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھیوں نے اطلاع دی ہے کہ دہلی اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالمی امور کے ماہر جناب سورب کمار شاہی صاحب، اور اسی طرح ہمارے لندن اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے انٹرنیشنل امور کے ماہر جناب ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی صاحب. دونوں سے ہماری گفتگو ہوگی. پہلے چلتے ہیں لندن جہاں پر اندرابی صاحب ہیں. السلام علیکم جناب. اندرابی صاحب السلام علیکم.
جی السلام علیکم.
اندرابی صاحب سب سے پہلے تو میں انتخابی عمل اور اس کا جو طریقہ کار اس سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں. الیکٹورل کالج کے 303 ووٹ ملے اوباما کو اور 206 مٹ رامنی کو ملے. آپ دیکھیں کہ امریکہ میں عوام کو براہ راست صدر منتخب کرنے کا حق یا اختیار حاصل نہیں, یہ کیسا سسٹم ہے؟
دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس سسٹم کے تعلق سے جو آپ نے بات کہی یہ بات امریکہ کے جو حلقے ہیں وہاں جو دانشور لوگ ہیں کچھ, وہ ان کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کا صدر جو ہے وہ لوگوں کی اکثریت سے چنا نہیں جاتا. ابھی ہمارے پاس یہ اعداد شمار نہیں ہے کہ اوباما نے کتنا پاپولر ووٹ حاصل کیا, اس نے عوام کی کتنی اکثریت سے وہ کامیاب ہوئے, لیکن وہاں جو الیکٹورل کالج کا سسٹم ہے اس میں تو وہ بہرحال کامیاب قرار دیے گئے. تو یہ مسئلہ جو وہاں کی اس جمہوریت کا ہے, بس یہی مسئلہ نہیں ہے کہ عوام کی اکثریت اور الیکٹورل کالج کا یہ جو مسئلہ ہے, اس کے علاوہ بھی اصل مسئلہ وہاں یہ ہے کہ الیکشن کا جو یہ طریقہ کار ہے اور یہ جو ایک طویل پروسیس ہے, اس طویل پروسیس میں بہت زیادہ وسائل چلے جاتے ہیں. اب دیکھیں نا, اس وقت کچھ $1.5 ارب کا خرچہ ہوا اس پر, 1.5 ارب سے بھی زیادہ, یعنی 2.5 ارب, یعنی $2.6 ارب اس پہ خرچہ آ گیا. تو اب اس کی ابتدا یہاں سے ہوئی جب مٹ رومنی کو پہلے اپنی ریپبلکن پارٹی سے نامنیشن حاصل کرنی پڑی, اس وقت بھی کئی ملینز اس کے خرچ ہوئے, اور پھر جب پریزیڈنشل ریس پھر جب طے ہوئی کہ اوباما اور مٹ رومنی کے درمیان ہے تو اس کے بعد بھی. تو یہ پیسوں کا اور ڈراما بازی سے مراد یہ ہے کہ بہت ہی میڈیا کا اس پہ اثر ہے. اب دیکھیں نا, ٹیلی ویژن ڈیبیٹس پہ کتنا ڈیپینڈ کرتا ہے, اور ٹیلی ویژن ڈیبیٹس پر جب یہ کینڈیڈیٹس آتے ہیں تو جس طرح ایک اداکار کو ڈائریکٹر ڈائریکٹ کرتا ہے کہ آپ کو کیسے اداکاری کرنی ہے, اسی طرح ان کے بڑے بڑے ایڈوائزرز ہوتے ہیں جو ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ ٹیلی ویژن ڈیبیٹ میں اپنے حریف کو کیسے پچھاڑ سکیں. تو یہ ایک بڑا ایک لمبا سلسلہ ہے, اور پھر ریاست کا جو رہنما ہوگا اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ٹیلی ویژن ڈیبیٹ میں کوئی جوہر دکھانے والا آدمی ہو, وہ تو ایک خاموش آدمی ہو سکتا ہے. جیسے ہندوستان کا پرائم منسٹر ہے, وہ کبھی کبھار بات کرتا ہے, اس کی کوئی ڈیبیٹنگ سکلز نہیں ہے لیکن قابل آدمی ہے. تو اسی طرح اس الیکشن کے طریقہ کار کے تعلق سے کئی باتیں ابھی سامنے آ رہی ہیں کہ یعنی ابھی نہیں بلکہ کافی وقت سے وہ زیر بحث ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا الیکٹورل کالج اور اکثریت کا معاملہ, عوامی اکثریت کا معاملہ وہ ایک ہے, الیکشن کے طریقہ کار میں پیسوں کا دخل, اور پھر یہ ٹیلی ویژن میڈیا اور اس ڈرامہ بازی کا دخل, یہ ساری چیزیں جو ہے اس عمل کو بہت ہی یعنی اس عمل کے جمہوری اس کے اندر جو جمہوری عنصر ہے وہ اس کو کافی حد تک متاثر کرتی ہیں.
جی بظاہر ہمارے ساتھیوں نے اطلاع دی ہے کہ دہلی سے رابطہ تو ہوا ہے لیکن کوشش کرتے ہیں. ہاں سوربھ کمار شاہی صاحب وہاں پر موجود ہیں, عالمی امور کے ماہر. آداب عرض جناب شاہی صاحب. جی شاہی صاحب, میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا یہاں پر کہ جو امریکہ میں جی الیکشن سسٹم ہے, ووٹنگ کا سسٹم ہے, وہ عجیب و غریب ہے. عام لوگوں کی سمجھ سے باہر آپ دیکھیں کہ فرض کریں کہ کیلیفورنیا میں جو الیکٹورل کالج کا ووٹ ہے وہ 100 ہے, اسی طریقے سے فلوریڈا میں فرض کر لیں کہ الیکٹورل کالج کا ووٹ جو ہے وہ 50 ہے. اب 50 میں سے اگر 45 ووٹ جو ہے رامنی حاصل کرتے ہیں تو ان کو وہ جو 5 ہے وہ بھی ان کو مل جائے گا, وہ 50 ہو جائے گا. یعنی در حقیقت رامنی نے 45 ووٹ حاصل کیے اور ان کو وہاں 50 ووٹ پورے مل گئے. اس کے برخلاف ہم جب کیلیفورنیا میں آتے ہیں تو وہاں پر رومنی کو جو ہے وہ ملے کتنے, 49, اور اوباما کو ملے 51. اب اوباما کو چونکہ 51 ملے تو وہ 49 ان کا ختم ہو گیا, ان کے پورے 100 ہو گئے. یعنی مجموعی طور پر دونوں ریاستوں میں ملا کے رامنی کو جو ملا وہ 94, और ओबामा को मिला 56 ओनली 150 में से, लेकिन जीते कौन? ओबामा। तो ये सिस्टम जो है ये काबिल एतराज नहीं है। आपके ख्याल में कि मजमूई तौर पर 96 वोट हासिल करने वाला भी जो है वो 56 वोट के मुकाबले में हार जाता है, ये कैसा सिस्टम है? और अमेरिका बहादुर जो दूसरे मुल्कों के मामलों में मुदाखलत करता है, वो कहता है कि वहाँ इलेक्शन का निज़ाम सही नहीं है, वोटिंग का सिस्टम सही नहीं, जमहूरियत का तरीक़ेकार सही नहीं है। तो ये जो अवाम को बरह रास्त वोट देने का हक हासिल नहीं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखें, इसमें दो बातें मैं जरा क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि थोड़ी कन्फ्यूजन मुझे लग रही है कि वहां पे है। जो आपने कहा इलेक्टोरल कॉलेज, वो इलेक्टोरल कॉलेज का जो मामला है वो इस तरह से है कि एक जिसको बोलते विनर्स टेक इट ऑल, यानी कि एक स्टेट में जिस भी आदमी को ज्यादा पॉपुलर वोट्स आती हैं, कहने का मतलब जिसे डायरेक्ट वोट ज्यादा हासिल होता है, उसे सारे इलेक्टोरल वोट्स मिल जाते हैं। यही है, सिर्फ जो दो स्टेट्स हैं नेब्रास्का और एक और स्टेट है उटा, इनके अलावा बाकी स्टेट्स में ऐसे होते हैं। ये थोड़ा इसमें डिफरेंस है, यानी ये नहीं हो सकता। आप देखिए, मोटा मोटी ऐसा होता है कि जिनके पास ज्यादा वोट आती है नेशनली, वही प्रेसिडेंट बनता है। ये अमेरिका की हिस्ट्री में सिर्फ 4 दफा ऐसे हुआ है जब जिनको ज्यादा वोट्स आई हैं पॉपुलर वोट्स, वो प्रेसिडेंट नहीं बने हैं। तो यानी इसमें प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्रोसेस जो है इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया वो थोड़ा अलग है। इस तरह से वो नहीं होता, वो एक्चुअली परसेंटेज वाइज होता है, जो कि बिल्कुल वो चीज जो है वो बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बताऊं दिक्कत कहां होती है। दिक्कत जैसे हुई 2000 वाले इलेक्शन में, जब जॉर्ज बुश को नेशनली कम वोट आया, फ्लोरिडा में भी उन्हें कम वोट था, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जहां पर कि उनके पहले लोकल कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में, जहां कि उनके अपने जो भाई हैं कजन जो हैं वो खुद ही जज थे, तो उन्होंने उनके हक में फैसला दे दिया। मेरा प्रॉब्लम जो है वो इस प्रोसेस से नहीं है, मेरा प्रॉब्लम कुछ और है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि जब जैसे ईरान में इलेक्शन जब हुआ, और आज तक जो फॉरेन मीडिया है वो कहती है, जब वो लिखती है डिस्प्यूटेड इलेक्शंस, जबकि कोई प्रूफ नहीं है इनके पास। 2000 में जो अमेरिका में इलेक्शन हुआ वो डिस्प्यूटेड था, प्रूफ ये है कि वो कोर्ट में गया और कोर्ट ने डिसीजन दिया, लेकिन जब उसको मेंशन करते हैं तो कभी नहीं लिखते डिस्प्यूटेड 2000 इलेक्शंस। मेरी दिक्कत जो है यहां है, मेरी दिक्कत इस टर्मिनोलॉजी से है। जहां तक आपने ये बात कही इलेक्टोरल कॉलेज की, तो वहां भी काफी डिबेट चल रहा है कि इसको खत्म करें, ये डायरेक्ट प्रोसेस को इसको लाएं, डायरेक्ट वोटिंग करें, और जिसको भी पॉपुलर वोट मिला है वो जीता है। जैसे अब आज आप देख लें, अभी 303 यानी 303 इलेक्टोरल वोट्स जो हैं ओबामा के पास हैं, 206 अभी रोमनी के पास हैं। इन्होंने फ्लोरिडा भी डिक्लेयर नहीं किया है, क्योंकि वहां पे जो मार्जिन जो विक्ट्री का वो 0.5% है, यानी 0.5, तो यानी अगर वो ओबामा को अगर मिल जाए, जो कि मिलेगा ही, तो उनकी टोटल नंबर जो है वो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 332, और इनकी नंबर्स रह जाएंगे 206। अब जो वोट्स में फर्क है वो देखें, 48.5% इनके पास है और 50.1 इनके पास है। तो वोट में उतने का फर्क नहीं है जितना फर्क इलेक्टोरल कॉलेज में है। अच्छा, ये एक तरफ रख ले। अब कांग्रेस की जहां तक बात है हाउस की, वहां पे रिपब्लिकन जीत गए हैं, तो ये फ्रैक्चर्ड हो जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें प्रेसिडेंट के हाथ बंद जाते हैं। अब मैं ये कहूं कि अगर कल ईरान निगोशिएट करे अमेरिका से, और बराक ओबामा चाहे भी कि वो ईरान पर से सैंक्शन उठा ले, तो कांग्रेस कभी इसे पास नहीं होने देगा। तो अगर कांग्रेस इसे पास नहीं होने देगा, क्योंकि कांग्रेस में रिपब्लिकन की मेजॉरिटी है। अच्छा, रिपब्लिकन अगर कुछ चाहे तो सीनेट पास होने नहीं देगा, क्योंकि सीनेट में मेजॉरिटी जो है वो डेमोक्रेट्स की है। तो ये मामला बड़ा पेचीदा हो जाता है। प्रोसेस से मुझे कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं दिखती, जो इलेक्टोरल कॉलेज का प्रोसेस,
लेकिन
है, दिक्कत ये है कि इसमें होमोजिनिटी नहीं होती है, आप समानता नहीं दिखती है, यहां पे मेरी प्रॉब्लम है।
शाही साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये सबसे बड़ी मुश्किल नहीं है कि पब्लिक को, अवाम को, जनता को बराह रास्त वोट देने का हक हासिल नहीं है, अख्तियार हासिल नहीं है, अधिकार हासिल नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है?
देखिए, देखें, जब आप कहते हैं डायरेक्ट वोटिंग का, तो मेरे मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा मामला नहीं है, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज का सिस्टम और भी मुल्कों में रहा है। मैं ये नहीं कहता कि उनका सिस्टम कैसा है, मैं किसी भी कंट्री के इलेक्टोरल सिस्टम पे मैं उंगली नहीं उठाता, क्योंकि हर कंट्री का अपना इलेक्टोरल सिस्टम होता है। मेरा ये कहना है कि मैं अगर मेरे अंदर कोई सिस्टम है जिसको मैं लाना चाहता हूं तो ठीक है। मेरा दिक्कत यह कि अमेरिका दूसरी जगह के सिस्टम्स पे उंगली क्यों उठाते हैं, ये मेरी दिक्कत है। मेरी दिक्कत यह नहीं कि उनका सिस्टम क्या है, उनके सिस्टम जो है वो उनके पास रहे। अगर वो लोग वहां के खुश हैं, लोग चाहते हैं कि वो तब्दील हो जाए तो ठीक है, लोग नहीं चाहते तो रहने दें। हम बाहर से नहीं कह सकते कि तब्दील कर दो, लेकिन उन्हें भी ये अधिकार नहीं है, उन्हें भी ये हक नहीं है कि वो ईरान में, रशिया में, पाकिस्तान में कहीं भी ये कहें कि आपका इलेक्टोरल सिस्टम अच्छा नहीं है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ताजिकिस्तान की बात मैं कर रहा था, ताजिकिस्तान में जब किर्गिस्तान की बात कर रहा था, वहां इलेक्शन हुआ तो जो कुछ ऑपोजिशन पार्टीज आ गई। अब जो ऑपोजिशन पार्टीज आ गई तो ये कहने लगे कि जी नहीं, ये ऑपोजिशन पार्टी वैलिड नहीं, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी कमजोर है। अच्छा, अब ये कौन डिसाइड करेगा कि कमजोर है या क्या है, ये तो उनका अपना सिस्टम है। आपने कहा वहां पे दो पार्टीज आई, इलेक्शन हुई, एक पार्टी जीत गई, अब उस पार्टी को 80% वोट मिले, लोग उसे चाहते हैं, तो ये आप यानी अमेरिका ये कौन होता है डिसाइड करने वाला कि जी नहीं, जो जीतता है उसे 50% वोट होनी चाहिए। अब पुतिन को लोग पसंद करते हैं तो उसे 60% वोट आ गई, अगर ह्यूगो चावेज को लोग पसंद करते हैं उन्हें 56-57% वोट आ गई। तो मेरा मसला उनके इलेक्टोरल सिस्टम से नहीं है, मेरा मसला यह है कि वो दूसरे इलेक्टोरल सिस्टम पे उंगली ना उठाएं, जो उनका अपना सिस्टम है उसमें वो खुश रहें, दूसरे के पास ये ना कहें कि भाई आपका सिस्टम जो है डेमोक्रेसी का वो परफेक्ट नहीं है।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलते हैं इस वक्त कराची, जहां पर टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान के इंतहाई बुजुर्ग और सरकर्दा तर्ज निगार प्रोफेसर शमीम अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
कैसे
मिला जी? शुक्र है प्रोफेसर साहब। क्या चीज थी जिसने अमरीका में सदर ओबामा को एक बार फिर जीत दिला दी?
देखिए जनाब, आपने जैसा कि सुना होगा जो तबसरे हो रहे थे अमरीकी जराय ब्लॉक में, कि फर्क दोनों में इतना कम है कि कोई तजिया निगार हतमी तौर पे नहीं कह सकता था कि कौन जीतेगा। तो इसका मतलब यह कि गैर यकीनी सूरत हाल थी, और किसी भी अब जीत होगी तो बराए नाम वोटों से होगी, और वो कोई फैसला कुल अक्सरियत उसके हक में नहीं होगी। तो ये तो इत्तेफाकात हैं। वैसे आप देखें तो अमेरिका का जो निज़ाम है वो सही मानों में जमहूरी नहीं है। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि अमेरिका दूसरों के निज़ाम इंतखाब और तरीक़े जमहूरियत पे और नज़रियात पे एतराज करता रहता है और फैसले साजिश करता है कि अलजज़ायर में इस्लामी महाज नजात की जो फतेह थी, हमारी अक्सरियत से कामयाबी हुई थी, तो उसे बदशकदार आने का हक नहीं है। इसी तरह से वो लीबिया में कहता है कि इख्वानुल मुस्लिमीन को और या इस्लाम पसंद ताकतों को न तो ट्यूनिस में आना चाहिए बदशकदार, और न लीबिया में आना चाहिए, और मिस्र के बारे में उसके बड़े तहफ़ुज़ात हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये दूसरों के तरीके इंतखाब पे नुकता चीनी करते हैं, अपने गरीबानों में झांक के देखें। साहब ये तो बिलवास्ता इंतखाब है, अमरीकी अवाम तो बेवकूफ़ बनाए जाते हैं। देखिए रियासतवार इंतखाब होता है और हर पार्टी एक अपने अपने जो इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं इंतखाबी अदारा, उनके अपने अरकान यानी जो सद को बराह रास्त मुंतखब करेंगे उनको नामजद करती है, और उसकी तादाद वही होती है जो उस रियासत में उसके अरकान ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट के होते हैं। इसी तरह दोनों पार्टियां इस किस्म के अपने फहरिस्तें पेश करती हैं, और अवाम जो हैं उन दो फहरिस्तों में से किसी एक को वोट दें। क्योंकि नतीजा ये होता है कि जब अवाम वोट दे चुके हैं तो जिसके वोट ज्यादा होते हैं जिस फहरिस्त के, तो उसके वोटर जो हैं उस फहरिस्त के जो वोटर हैं वो तो राय जिंदगान सदर को वोट दें कि उनका शुमार किया जाएगा वोट चाह सकते, लेकिन जो पार्टी हार गई है उस रियासत में उसके अरकान जो हैं इस फहरिस्त के उनके वोट भी शुमार कर लिए जाएंगे जीतने वाले के लिए। तो ये तो मैं समझता हूँ कि जाहिर है जमहूरी तरीका है, इसी वजह से इस किस्म के तजादात देखने में आते हैं। जैसा अलगोर के इलेक्शन में हुआ था तो उसको 1,00,000 वोटों की बढ़तरी हासिल थी जहां तक आवाम के वोटों का ताल्लुक, लेकिन अवाम तो बेचारे सदर को तो बर्दाश्त रोक देते ही नहीं, वो तो अरकान फहरिस्त को देते हैं, तो हर पार्टी अपनी अपनी फहरिस्त हर रियासत में, तो हर रियासत के नतायज जो हैं उनको ये शुमार करते हैं, उसका मीजान निकाल के ऐलान कर देते हैं। तो गोया 538 जो अरकान हैं इलेक्टोरल कॉलेज के इंतखाबी इदारे के, वो वोट देते हैं, और उसमें अगर किसी को 270 वोट मिल जाए तो वो कामयाब होता है। फ्रांच एल गोर के इलेक्शन में आपने इतजार देखा होगा कि अवाम ने तो 1,00,000 वोट ज्यादा दिए एल गोर को जॉर्ज बुश के मुकाबले में, लेकिन जो अरकान थे फेरिश के इलेक्टोरल कॉलेज के, उनके वोट जो शुमार किए गए मशीनों से, और उसमें बड़ी गलतियां थी, और उसमें दोबारा जब कहा गया कोर्ट ऑफ अपील ने कहा कि इनकी दोबारा हाथ से गिनती शुरू की जाए, और गिनती शुरू हो गई थी और उसमें भी एल गोर जीत रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत करके उस गिनती को रुकवाया और जॉर्ज बुश को उसने मनमानी तौर पे मुंतखब ऐलान कर दिया। तो इस पर तो क्लिंटन ने भी एतराज किया था कि ये निज़ाम जो है बिलवास्ता, ये बड़ा फरसूदा है, इसमें तब्दीली होनी चाहिए और अवाम को बराह रास्त वोट देने का हक होना चाहिए, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं, और नतीजतन वो सदर जिसको कि अक्सरियत की नुमाइंदगी हासिल थी वो पूरे अमेरिका के सदर बन बैठा। तो ये निज़ाम इतना नाकिस है कि इसमें अवाम किसी को चाहे वोट दें, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अवाम का जो नुमाइंदा है वो मुंतखब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ओबामा को दोनों में अक्सरियत हासिल हुई है, लेकिन ये अक्सरियत हमारी रक्षित नहीं कही जा सकती। अलावा अजी इन फर्क दोनों में, दोनों नुमाइंदों में और दोनों अमेरिका की पार्टियों में कोई फर्क ही नहीं है। मुझे याद है कि निक्सन और कैनेडी का इलेक्शन हुआ तो उसमें पहली मरतबा मुनाजरा शुरू हुआ था रूबरू, जैसे कैनेडी और रोमनी के दरमियान हुआ, तो उस जमाने में यही कहा जा रहा था कि कांटे का इंतखाब है और कोई कह नहीं सकता कौन जीतेगा। तो उसमें रूस के रहनुमा निकिता क्रिस्टेव से पूछा गया कि आपके ख्याल में इसमें कैनेडी और निक्सन में क्या फर्क है, और इनमें से कोई अगर मुंतखब हो गया तो रूस में क्या असर पड़ेगा। उसने कहा रूस में कोई असर नहीं पड़ेगा, और जहां तक इन दोनों के दरमियान फर्क का ताल्लुक है तो वो वही फर्क है जो एक जूड़े जूते में होता है, दोनों ही पांव में पहने जाते हैं और दोनों ही एक जैसे होते हैं। तो ये उनका तबसरा था, मैं सुनता हूँ बरमेल, मैं इससे इतफाक करता हूँ।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। डॉक्टर अनायतुल अनराबी साहब, आप देखें कि इंतखाबी मुहिम में दोनों उम्मीदवारों ने, चाहे वो रोमनी हो चाहे ओबामा, इक्तिसादी जो मसाइल हैं उन्हीं को सबसे ज़्यादा तरजीहात में रखा और उन्हीं पे सबसे ज़्यादा गुफ्तगू की, चाहे वो मुनाजरा हो चाहे वो इलेक्शन कंपेन हो। लेकिन हैरत की बात यह है कि अब जबकि पहली तकरीर की इलेक्शन जीतने के बाद बराक ओबामा ने कोई वादा नहीं किया कि हम आपकी इक्तिसादी मुश्किलात को हल करने की कोशिश करेंगे या हल कर देंगे, या आपकी जो माशी या रिफाही जो सहूलतें उन्हें दोबारा बहाल कर देंगे, ऐसा क्यों?
देखिए मैं आपकी बात की तरफ आता हूं, लेकिन उससे पहले जो आपने पहले सवाल उठाया था अमेरिका में अवाम की अक्सरियत से सदर मुंतखब होता है या नहीं, तो उसमें देखिए ना, उसमें ज्यादा एक बुनियादी मसला है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराऊंगा। बुनियादी मसला यह है कि अमेरिका में भी और किसी हद तक यहाँ भी यूरोप में भी एक बहुत ही एक एहसास डेवलप हो रहा है रोज़ बरोज़, वो ये है कि यहाँ इलेक्शन के वक्त कोई बड़ी चॉइस नहीं होती, यानी कोई सिया सफ़ेद का कोई इंतखाब नहीं होता कि लोग कहें कि नहीं ये मैं इसको वोट करूं और इसको ना करूं, कोई चॉइस ही नहीं होती। अमेरिका में भी अक्सर लोगों का मसला यही था, अभी आदाद शुमार तो आने को हैं, लेकिन आप देखिए कि यहाँ रोज़ बरोज़ टर्न आउट कम हो रहा है इलेक्शंस में, लोग इलेक्शंस और इस प्रोसेस से ज़रा बेजार हो रहे हैं, इससे कि वो ये समझते हैं कि ये सियासी टोला एक ही मफाद रिप्रेजेंट करता है और अवाम का मफाद एक है, सियासी टोले का मफाद दूसरा है। और अगर आप जरा पीछे जाएं है, तो इसीलिए कोई ज्यादा इसमें चॉइस नहीं रहती है। ओबामा ने क्यों इस वक्त जीता और रोमनी ने क्यों नहीं जीता, इसमें दूसरे अवामिल हैं जिसकी तरफ इस वक्त मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन उसमें मैं इशारतन ये कहूंगा कि उसमें ज्यादा जो है वहां अफ्रीकी अमरीकी जो है उन्होंने बहुत ही डटकर ओबामा का साथ दिया है, पिछले इलेक्शन में भी इस वक्त भी उनका टर्नआउट बहुत ज्यादा रहा है। तो मैं आपकी बात की तरफ आकर ये कहना चाहता हूं, आप जो ये फरमा रहे थे कि इक्तसादी मसाइल, असल में देखिए ना, अमेरिका के इक्तसादी मसाइल जहां तक माहिरीन का ताल्लुक है, वहां पर जो एक रिसेशन और वो जो शुरू हुआ कई सालों से वो इरिवर्सिबल है, वो फिर यानी ये हो सकता है कि वो मजीद तनजुल की तरफ ना जाएं, लेकिन वो रिकवर उनका करना बहुत मुश्किल है। और उसका वहां का इक्तसादी मसला अमेरिका की सियासी और उसकी खारजी पॉलिसी से बराह रास्त मुंसलिक है। अमेरिका जब तक दुनिया में दखल अंदाजी करता रहे उसको इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी और उसकी इकोनॉमी रिकवर नहीं हो पाएगी। इसीलिए ओबामा ने इस पर ज्यादा कोई बात नहीं की, इसलिए कि उसको मालूम है कि उसके क्या उसका क्या दायरे कार है, वो जिस कुर्सी पर बैठेगा उसकी कितनी इंडिपेंडेंस है। यानी ओबामा अगर खुद चाहे भी, लेकिन उसको मालूम है कि उसके करने पर कितनी कदगने हैं, यानी अगर वो खुद चाहे भी, अगर फर्ज करें,
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया,
तो लिहाजा
बहुत शुक्रिया आपका
जी।
शाही साहब, आप देखें कि जिन जिन मुल्कों में इस तरह के इलेक्शन होते हैं कि दो टर्म के होते हैं, मसलन जैसे अमेरिका है, तो पहले टर्म में जब इंतखाबी कैंपेन चलती है तो लोग जो वादा करते हैं कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं से किसी हद तक जो है वो चार साल के अंदर वो वादे किसी हद तक पूरे कर दिए जाए। मसलन ओबामा ने तब्दीली का नारा दिया था 2008 के इलेक्शन में, लेकिन देखने में ये आया कि न सिर्फ ये कि वो कोई तब्दीली ला नहीं सके बल्कि हालात और बदतर हो गए, चाहे वो खारजा पॉलिसी हो, फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे वो मुल्की और दाखिली पॉलिसी हो। तो अब जबकि वो दोबारा फिर इलेक्शन जीत गए हैं, जब पहले टर्म में वो अपना वादा नहीं पूरा कर सके, तो दूसरे टर्म के लिए उन्होंने जो वादे किए थे उसको पूरा करने में कितने संजीदा आपके ख्याल में होंगे?
मैं फिर जरा यहाँ पे फर्क करना चाहूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि खारजा पॉलिसी जो है वो बदतर हुई है, क्योंकि आप फिर से देखें जॉर्ज बुश का जमाना देखें और बराक ओबामा का। मैं ये जरूर है कि एक इनकी जो पॉलिसी, ओवरऑल पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी यूएस जो है कि जो मिडिल ईस्ट में या कहीं भी दुनिया में कह लें फॉरेन पॉलिसी, वो गड़बड़ है। लेकिन कम से कम मैं जॉर्ज बुश से तो ज्यादा मार्क्स नंबर इन्हें जरूर दूंगा, तो इसलिए मैं यहां पर थोड़ा सा इख्तलाफ रखता हूं। खैर, इसके अलावा जो दूसरे टर्म की बात आप कह रहे हैं, तो मुझे ये लगता है, मैं जरा ऑप्टिमिस्ट हूं कि इस बार ओबामा कुछ ऐसे डिसीजंस वो लेंगे जो हो सकता है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान और रूस और अमेरिका के दरमियान जो अभी संबंध हैं, जिस तरह के हालात अभी हैं, उसमें कुछ सुधार आएगी, ऐसा मेरा इम्कान है। मुझे ऐसा लगता है कि सेकेंड टर्म में, आपने पूछा सेकेंड टर्म में क्यों, मैं उसका जवाब देता हूं, वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट टर्म जो होता है, पहला जो टर्म होता है किसी भी प्रेसिडेंट का, उसमें हमेशा उसे ये डर होता है कि वो दूसरी दफा चुना जाएगा या नहीं। आप देखें अमेरिका में बड़े डिसीजंस हमेशा प्रेसिडेंट दूसरे टर्म में करते हैं, क्योंकि उसके बाद उन्हें हारने का डर नहीं होता। तो पिछली दफा आपने देखा कि लास्ट छह महीने में जो ओबामा ने जिस तरह का स्टैंड लिया, आप देखें बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ, बहुत ये बहुत नुआंसेज वाली बात है, पर आप इस पर गौर फरमाएं कि जिस तरह से नेतन्याहू तीन दफा यूएस में गए और एआईपीएसी जो उनकी लॉबी है, अमेरिका इजरायली पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जिस तरह से उन्होंने प्रेशर डाला है कि आप जो है वो हमारा साथ दे ईरान पे अटैक करने में, उस प्रेशर को ओबामा ने इतने प्रेशर के बावजूद, इलेक्शन ईयर के बावजूद डिफ्लेक्ट किया है। तो मैं ये तो ऑब्वियसली सबको पता है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, और वो कोई भी प्रेसिडेंट बन जाए कोई बहुत ज्यादा उसमें फर्क नहीं आएगा, लेकिन नुआंसेज के कुछ फर्क हैं। मैं ये तो जरूर कहूंगा कि कम से कम जॉर्ज बुश का जो जमाना था उससे तो बेहतर है, और मुझे ये उम्मीद है, इम्कान है कि इस दफा वो कुछ ऐसा करेंगे। कुछ इस तरह का इनिशिएटिव लेंगे जिससे हालात कुछ सुधरेंगे। मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह सुधर जाएंगे, चीजें बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी, ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन मेरा ये जरूर कहना है कि चूंकि ये दूसरी दफा है और इनको हार जाने का अब खतरा नहीं है, क्योंकि अब इसके बाद तो ये चुने नहीं जा सकते अकॉर्डिंग टू लॉ, तो ये कुछ इनिशिएटिव लेंगे जो आपको शायद अगले 4-5 महीनों में दिखने लगेगा। जहां तक दाखिला पॉलिसी आप कह रहे हैं उसकी बात है, तो वहीं पे फर्क इन दोनों के बीच में होती है। आप जो देख लें, ये जो पूरा इशू है हेल्थ केयर का और इस तमाम इस तरह की चीजें हैं, ये डेमोक्रेटिक इश्यूज हैं, इसको डेमोक्रेट जो है जो पार्टी है वो हमेशा से उठाती रही है और ये इन चीजों को आगे ले जाएंगे। लेकिन जैसा फिर मैंने पहले क्वेश्चन में आपसे मैंने ये बात कही थी कि कांग्रेस पे अख्तियार जो है वो फिर से रिपब्लिकन का है, तो वहां पे वो कितना कोऑपरेट करेंगे, कितनी पिछली दफा उन्होंने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया, आपने देखा किस तरीके से ऑर्डिनेंस के थ्रू पास करवाना पड़ा जो इनका हेल्थ बिल है, तो कितना कोऑपरेट करेंगे ये मैं नहीं जानता। वहीं पे इनकी असली जो है वो देखी जाएगी कि कितने आर्टिकुलेट या कितने आप कह लें कि ये डिप्लोमेटिकली ये खेल पाते हैं प्रेसिडेंट। लेकिन जहां तक मुझे लगता है पॉलिसी की बात है, तो मैं सोचता हूं कि कुछ ना कुछ इसमें सुधार जो है, पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म जो है मुझे नजर आ रहा है।
बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर शमीम अख्तर साहब। आप देखें कि जब हम पाकिस्तान में ड्रोन हमलों के ताल्लुक से नजर दौड़ाते हैं तो ओबामा के ज़माने में और बुश के ज़माने में ज़ाहिर है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और जितना नुकसान ज़ाहिर है कि 9/11 के बाद जो वाक़या शुरू हुआ बुश के ही ज़माने में शुरू हुआ, लेकिन जितना नुकसान ओबामा के ज़माने में पाकिस्तान को पहुंचा, मेरा ख्याल है कि बुश या तो शुरुआत का ज़माना था या बहरहाल जो भी वजह रही हो वो बुश के ज़माने में नहीं पहुँचा। तो अब आइंदा 4 वर्षों में पाकिस्तान और अमरीकी इंतजामिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसको किस तरह से देख रहे हैं, जबकि गुज़िश्ता 4 साल के दौरान ओबामा की तरफ से डू मोर को ही कहा जाता था उसकी इंतजामिया की तरफ से, क्या मजीद डू मोर का जो है वो राग अलापा जाता रहेगा?
यकीनन, और उसका दबाव सख्तर होता जाएगा, ड्रोन हमलों में इजाफा होगा, उसमें वसत पैदा की जाएगी, पाकिस्तान की इमदाद में कटौती की धमकी दी जाएगी, तो पाकिस्तान को तो कोई खुशफहमी नहीं है। कि देखिए, इसके मुकाबले में रोमनी ने हालांकि ड्रोन हमलों की हिमायत जरूर की उसने, लेकिन अगर आपको याद हो तो मुनाजरे के दरमियान उसने ये जरूर कहा था कि अमरीका ने यानी ओबामा साहब की इंतजामिया ने अबटाबाद में हमला करके नाजिन को जो हलाक किया और पाकिस्तान की इजाजत और इसके इल्म लाए बगैर ऐसा किया, तो इससे पाकिस्तान की दोस्ती उसने खो दी और पाकिस्तान को नाराज कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उस पर ओबामा ने फौरन तुर्की मतुर्की जवाब देते हुए कहा कि अगर मैं पाकिस्तान को बता देता, उनके कान में इसकी भनक ये पड़ जाती कि हमें कार्रवाई करने वाले हैं, तो आईएसआई फौरन ओसामा को वहां से फरार का मौका फराहम करती। तो इससे देखिए, ये गैर सिफारती बयान है, आप पाकिस्तान कोई ऐसा छोटा मुल्क नहीं है कि आप उसकी 18 करोड़ आबादी की जिदादारी करें, और ये तो जंगी जुर्म है, ड्रोन हमले करना जो है ये तो जंगी जुर्म है जिसका ओबामा मुर्तकिब है, और इसके खिलाफ तो अक्वामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक की काउंसिल में इनसे बातपूछ की गई है कि वो बताएं कि जो उन्होंने ड्रोन हमले किए हैं तो उसका क्या जवाब था, और उसमें गैर मुतहारिबीन की हलाकतें जो हुई हैं वो बताएं, और ये भी बताएं कि वो किस तरह से इस बात को यकीनी बनाते हैं कि ड्रोन हमलों में हलाकतें जो हैं शहरियों की वो नहीं होगी। उसके अलावा आपको मालूम होगा कि न्यूयॉर्क स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक जायजा लिया था मुश्तरका तौर पर, और वो इस नतीजे पहुंचे थे कि सिर्फ 2% जो अस्करी पसंद हैं वो तो इन हमलों में मारे गए, बाकी सब शहरी थे, जबकि 176 बच्चे थे। तो ये गोया इन दो यूनिवर्सिटियों का जो बड़ी मुस्तंद जामियात हैं अमेरिका की, उनकी तहकीकी रिपोर्ट थी, और जिमी कार्टर जो खुद डेमोक्रेट के सदर रह चुके हैं कई बार वो कह चुके हैं कि ड्रोन हमले जो हैं ये गैर कानूनी हैं, और सियासी एतबार से भी इनका उल्टा असर होता है, और अस्करी पसंद पैदा हो जाते हैं, अगर आप एक को मारते हैं तो 10 पैदा हो जाते हैं, और खुद न्यूयॉर्क में अमेरिका की सिविल लिबर्टीज यूनियन ने न्यूयॉर्क की जिली अदालत में ये सवाल उठाया है कि बुश साहब ये बताएं, यानी ओबामा साहब ये बताएं कि वो किस कानून के तहत ये हमले कर रहे हैं। तो हमारे नुकतः नजर से तो वो बिल्कुल, और बैनुल-अक़वामी नुकतः नजर से वो बिल्कुल जंगी जराइम में आता है। खुद इसी के जमाने में, आपको याद होगा, इसी के जमाने में ईरान के जो साइंसदान थे, जौहरी साइंसदान थे, उनको कत्ल किया गया था। और इसी के जमाने में ईरान के जो जौहरी निजाम है उसके ऊपर साइबर हमला किया गया था, जो जुर्म है। तो मैं तो नहीं समझता कि कोई सुधार आएगा, जैसा कि अभी एक साहब फरमा रहे थे। यानी आप देखें ईरान के बारे में उसका बड़ा मौखिक का बड़ा दो टोक है उसमें, और रोमनी में कोई फर्क नहीं है। उसने भी यही कहा है कि अगर इसराइल हमला करेगा तो उसका जवाबी हमला अगर ईरान करेगा तो आप क्या करेंगे। तो उसने ये कहा था कि भारत हम तो इसराइल के हलीफ हैं और हम इसराइल का हर हालत में साथ देंगे। इसके अलावा ओबामा ने ये तासुर तो दिया है कि वो नेतन्याहू से अपना फासला बरकरार रख रहा है, लेकिन उसका एक खुफिया खत जो यूरोपीय यूनियन के तमाम अरकान को दिया गया था उसमें ये लिखा गया था कि जहां तक के फलस्तीनी मुक्तजरा के अक्वाम मुत्तहदा के गैर मुबशिर होने का ताल्लुक है तो इस सिलसिले में यूरोपी जो है इसकी मुखालफत करें। तो फलस्तीन के बारे में भी उसका मौकफ यही है कि वो फलस्तीनी रियासत को किसी सूरत में रुकनियत देने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं तो कोई फर्क नहीं समझता दोनों में।
बहुत शुक्रिया आपका। के खिलाफ, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब।
ओबामा ने सही मानों में कशीदगी पैदा की है, उसके तदाद पर पाबंदी आयद करना चाहता है, उस पर दबाव डालता है कि वो अपने करेंसी के कर्ज में इजाफा करे, जबकि जॉर्ज बुश के जमाने में चीन से बेहतरीन ताल्लुकात थे। और ये ओबामा था जिसने भारत के जौहरी प्रोग्राम को बाकायदा तौर पर मदद दी, टेक्नोलॉजी उसने फराहम की, जो कि जॉर्ज बुश ने नहीं किया था। इस तरह से उसने भारत के जौहरी प्रोग्राम में इजाफा किया ताकि वो अपनी सलाहियत, जौहरी असला बढ़ाने की सलाहियत में इजाफा कर सके।
प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँगा, वक्त रहा तो आपकी खिदमत में। नवाज़िश साहब की, इनायतुल्लाह अंद्राबी साहब, मशरिक़ वुस्ता के ताल्लुक से आप देखें कि जहाँ पर हालात रोज बरोज तब्दील होते जा रहे हैं, और ओबामा, अगर आपको याद हो तो उसने 2008 के पहले ये कहा था कि हम दो फिलिस्तीनी ममलिकत के, यानी दो ममलिकत के क़याम के हामी हैं, एक इसराइल हो एक फिलिस्तीन हो। लेकिन जैसा कि सब जानते हैं और अभी प्रोफेसर साहब भी फरमा रहे थे कि अंदर से वो इसका मुखालिफ है, अगरचे जो असल फिलिस्तीनी वो चाहते हैं कि उनका कहना है कि फिलिस्तीन पूरा फिलिस्तीन का हक है और वहाँ पर जो गासिब हुकूमत है वो गासिब है, उसको बहरहाल वहाँ पर नहीं रहना चाहिए हमारी सरजमीन पर। तो अब आप क्या समझते हैं कि आइंदा चार बरस में फिलिस्तीन के ताल्लुक से बिलखसूस और मशरिक़ वुस्ता के ताल्लुक से बिलुमूम क्या पॉलिसी होगी बराक ओबामा की?
देखिए, मशरिक़ वुस्ता और फलस्तीन का मामला जो है उसकी उसकी आलमी सियासत में उसकी हैसियत एक शहर की है, उससे काफ़ी कुछ आलमी सिनेरियो जो है वो डिटरमाइन होता है। लिहाजा मैं नहीं समझता कि उसमें कोई फ़र्क है रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के दरमियान, और मुझे तो ऐसा कोई मैं तो नहीं समझता, मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है कि अमरीकी हुकूमत ऐसी कोई चीज़ कर सके जो इसराइल के, जो इसराइल अपने मफादात समझता है, जो सहूनी मफादात के ख़िलाफ़ अमरीकी हुकूमत काम करे, मैं तो ये नहीं समझता। ये ओबामा नहीं करेगा। अब देखिए, अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी और खसूसन मशरिक़ वुस्ता का मामला जो है, इसका ताल्लुक बराह रास्त अमेरिका की अपनी ग्लोबल पोजीशन के साथ है, और उस पर वो उनमें उनके अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। आपको याद होगा कि जब इराक पर पहली जंग की गई, जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर जारहियत की थी और अमेरिका ने फिर इराक पर हमला किया, तो अमेरिकी कांग्रेस में रिपब्लिकन और जमहूरी और डेमोक्रेट्स वो एक दूसरे के, उन्होंने हाथ मिलाए और उन्होंने कहा कि आज कोई डेमोक्रेट आज कोई रिपब्लिकन नहीं है। तो उनका इस पर एक कंसेंसस है और ये सारी मशरकी वुस्ता की पॉलिसी जो है ये बिल्कुल दोनों पार्टियों के दरमियान इस पर कंसेंसस है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी और ओबामा कुछ नहीं कर पाए करेगा जिसकी जो जो हमें बहुत ही लगे कि कोई 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 अमेरिका की कोई 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 तब्दीली कोई तब्दीली वाला इकदाम वो नहीं उठाएगा।
जी बहुत शुक्रिया आपका। सौरभ कुमार शाही साहब, आपने अभी अपनी गुफ्तगु में फरमाया कि नेतन्याहू को दो या तीन बार उन्होंने अमेरिका में मिलने से या तो इनकार किया या अगर मिले तो बड़े सर्द मेहरी के साथ उनकी मुलाकात हुई ओबामा की, लेकिन अभी जो मिट रोमनी और ओबामा के दरमियान जो मुनाजरा हुआ था, जो टॉक हुआ था, डिबेट हुआ था, उसमें आप देखें कि दोनों ने सर तोड़ कोशिश ये की कि अपने को ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन जाहिर करें और इसराइल का सबसे बड़ा दोस्त जाहिर करें। तो ऐसे में आप आने वाले चार वर्षों में इसराइल अमेरिका के ताल्लुकात और ईरान के ताल्लुक से जो अमेरिका का रवैया है उसको कैसा देख रहे हैं?
देखिए आप एक चीज़ समझे, मैं बार बार ये कहता हूँ, मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ, मैं फॉरेन अफेयर्स कवर करता हूँ, कई चीज़ें जो हैं वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए होती हैं और कई चीज़ें पॉलिसी के लिए होती हैं, इसमें इसके फर्क को समझें। कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट टीवी पे आके आवाम के सामने ये नहीं कह सकता कि वो इसराइल का विरोध करेगा और वो ईरान का साथ देगा, ये तो आप भूल जाएं, अगले 200 साल में नहीं होने वाला। इसे पब्लिक कंजम्पशन कहते हैं, पॉलिसी ये नहीं होती। मैं आपको बता दूं कि अगर मिट रोमनी आज जीते होते तो मार्च और अप्रैल के दरमियान ईरान के ऊपर इसराइल जो है अमेरिका की मदद से अटैक कर चुका होता। ये आप इस बात को समझें कि कहीं ना कहीं जो प्रेशर इन्होंने बनाया है उसको ओबामा ने थॉट किया है उस प्रेशर को ईरान पे हमले के लिए। कोई इसको माने ना माने, आप हुकूमत में जो लोग हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं, ये इस बात को अग्री करेंगे। हम लोग बहुत क्लोजली इस चीज को फॉलो करते हैं, कभी भी इन दो बातों को मिक्स ना करें। जो पब्लिक कंजम्पशन है वो अलग चीज है, वो तो मैं कह ही रहा हूं कि जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है वो अच्छी नहीं है, पर जब आप डिफरेंस की बात करते हैं तो ये डिफरेंस यहां पे है। मिट रोमनी की अगर आप बात करें, मिट रोमनी की पॉलिसी ये होती, उनके हुकूमत की पॉलिसी ये होती कि कल वो अलाउ कर देते यूनिलैटरल डैमेज हमला करने के लिए इसराइल को। मैं आपको ये बात बता दूं, अगर आप शायद आपको ये बात याद हो, आज से 3 साल पहले जो बिडेन जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक मेमो भेजा बेंजामिन नेतन्याहू को। उस मेमो में ये लिखा हुआ था कि योर एक्शंस इन द रीजन डिटरमाइंस द फेट ऑफ आर चाइल्ड कहने का उनका मुराद था सोल्जर्स फॉर आर चिल्ड्रन इन इराक। उनका ये कहना था कि तुम जो अपने हल्के में करते हो उससे हमें नुकसान होता है। आज से पहले जो भी फॉरेन पॉलिसी कवर करते हूं, ये बात मुझे बता दें कि पिछले 40 साल में किस वाइस प्रेसिडेंट ने अमेरिका में ने इसराइल के किस प्राइम मिनिस्टर को ये बात कही है कि आप जो है वो गलत कर रहे हैं और इससे हमें नुकसान हो रहा है। तो इस छोटी छोटी चीजों को समझे, नुआंसेस को समझे यहां पर क्या होता है। और जो इनके जनरल थे वहां पे इराक में, जो कंबाइंड इनकी फ्लीट के जनरल थे, उन्होंने भी ये नोट लिखा और उसमें कहा कि जो इजरायली पॉलिसी है उससे हमें नुकसान हो रहा है।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।
उन्होंने साफ वर्ड लिखा कि हमें इससे नुकसान हो रहा है, पहले किसी ने नहीं लिखा।
बात हमारा बिल्कुल खत्म हो जाता है शाही साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं, बहुत शुक्रिया
वहां पे।
जी नाज़रीन, आपने हमारे मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई और जो एक निचोड़ आया वो ये कि फॉरेन पॉलिसी में कोई बड़ी तब्दीली नहीं होती, हाँ कहीं कहीं छोटे मोटे जो है फर्क बहरहाल सामने आते हैं। और खुलासा अगर कहा जाए तो यही कि रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट्स, एक ही सिक्के के दो रुख हैं। बहरहाल जो मुस्तज़फ़ कौमें हैं, जो तीसरी दुनिया की कौमें हैं, जो मुसलमान कौमें हैं, जो अमरीका की पॉलिसियों के सामने उठ खड़ी होती हैं या जो उनका मुकाबला करती हैं, उनके लिए ये दोनों ही पार्टियाँ एक जैसी हों, चाहे हैं चाहे वो मिट रोमनी आते या ओबामा आते। बहरहाल अगले प्रोग्राम के लिए मुझे अली बात कीजिए, दीगर साथियों की इजाजत दीजिए, खुदा हाफ़िज़।